नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का चौथा चरण आज से, भागलपुर में 141 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा आज से शुरू, 12 लाख से अधिक अभ्यर्थी हो रहे हैं शामिल। और 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार की महिला रग्बी टीम ने रजत पदक जीता, पटना के शुभम ने वुशु मुकाबले के फाइनल में जगह पक्की की। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगी। यह नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट होगा। एक रिपोर्ट।
2019 में पदभार संभालने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह लगातार आठवां बजट होगा। लोकसभा में बजट पेश किए जाने के बाद बजट की प्रति राज्यसभा में पेश की जाएगी। अपने बजट पूर्व परामर्श के दौरान वित्त मंत्री ने किसान संघों, कृषि अर्थशास्त्रियों, श्रमिक संघों, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, व्यापार और सेवा, उद्योग अर्थशास्त्रियों, वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजार के विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों सहित कई हितधारकों के साथ बैठकें की। 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री सीतारमण ने पहला पेपरलेस बजट पेश किया था और तब से डिजिटल बजट पेश किया जा रहा है। बजट सत्र का पहला भाग 13 फरवरी तक चलेगा, जबकि सत्र का दूसरा चरण 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। सुपर्णा साइकिया के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
पटना स्थित बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी में असिस्टेंट प्रोफेसर और अर्थशास्त्री सुधांशु कुमार ने कहा है कि केंद्रीय बजट से बिहार को काफी उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि बजट में प्रदेश को विशेष वित्तीय प्रावधान प्राप्त होने की संभावना है।
केंद्रीय बजट से बिहार को काफी अपेक्षाएं हैं और इस अपेक्षा का आधार केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए 2047 तक भारत को एक विकसित और सशक्त राष्ट्र को भी रखा जा सकता है, जिसके लिए बिहार सहित देश के पूर्वी क्षेत्रों का तेजी से विकसित होना आवश्यक है। इस संदर्भ में जो बजट कर सकता है वह यह है कि राज्य के लिए विशेष वित्तीय प्रावधान किए जाएं, जिसके आधार पर आधारभूत संरचनाओं का विकास हो सके, जिसमें विभिन्न रोड से जुड़ी हुई, रेल से जुड़ी हुई परियोजनाओं के साथ साथ नए एयरपोर्ट का विकसित होना भी शामिल हो सकता है।
वहीं आम लोगों को भी केंद्रीय बजट से काफी उत्सुकता है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में लोगों ने शिक्षा, स्वास्थ्य समेत अन्य क्षेत्रों में बजट आवंटन बढ़ाए जाने की उम्मीद व्यक्त की है।
मेरा नाम कुमारी गुड्डी है। मैं उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय बेलवा काशीपुर किशनगंज में अंग्रेजी शिक्षिका के रूप में पदस्थापित हूँ। मैं राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्तकर्ता 2023 हूँ। जैसा कि अभी बजट के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हो रही है, तो मेरा यही मानना है कि बजट जो है गरीबी उन्मूलन बजट होना चाहिए, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य यही रहना चाहिए कि गरीबों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। मैं इस पर विशेष रूप से कहना चाहूंगी कि शिक्षा और कौशल विकास पर अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पहले भी बच्चों को डीबीटी के माध्यम से राशि डायरेक्ट खाते में ही पहुंचती है और इस पर अगर थोड़ी बढ़ोतरी होती है बजट में तो इसका लाभ बच्चों को और भी पहुंचेगा और शिक्षा के प्रति उनका रुझान और भी बढ़ेगा।
मैं निशा कुमारी सारण छपरा से, आगामी केंद्रीय बजट 2025-26 में गरीबी निवारण के लिए रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य योजनाएं शुरू होनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण और प्रसव कालीन देखभाल पर ध्यान दिया जाए। सरकारी स्कूल और कॉलेजों में महिलाओं के लिए सुविधा का माहौल बनाया जाए।
हमारी सरकार की से यही निवेदन है कि यह जो बजट होगा वो निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग के परिवार के लोगों को ध्यान में रखकर जो है बनाया जाना चाहिए। आज की सबसे बड़ी समस्या है वो है बेरोजगारी, उसका सबसे प्रमुख कारण हो गया है कि यहाँ पे के जो युवा है उसमें स्किल ज्यादा नहीं है, तो इसके लिए जो युवाओं में जो है स्किल डेवलपमेंट के लिए जो है बजट में जो है ध्यान में रखकर जो है ऐसे योजनाएं लाना चाहिए जिससे कि लोग आज के युवाओं में जो है स्किल डेवलपमेंट हो।
मैं सुधांशु शेखर, शिक्षक बलदेव इंटर विद्यालय जिला दानापुर कैंट। आगामी बजट में केंद्र सरकार को शिक्षा पर आवंटन बढ़ाना चाहिए, खास करके रोजगार परक शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाए। जहां तक छात्रों के उन्मुखी का सवाल है, इस पर व्यावसायिक शिक्षा पर भी अधिक जोर दिया जाना चाहिए, जो कि विद्यालयों में भी बंद हो चुका है, और छात्रों के लिए अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना भी की जाए, इसके लिए भी सरकार को आवंटन देना चाहिए।
आज केंद्रीय बजट पेश किए जाने को देखते हुए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कारोबार के लिए खुले रहेंगे। यह तीसरा मौका है जब बजट के कारण शनिवार को शेयर बाजार खोला गया है। इससे पहले 1 फरवरी 2020 और 28 फरवरी 2015 को बजट पेश किए जाने के कारण शनिवार को शेयर बाजार खुले रहे थे। आज सामान्य दिनों की ही तरह शेयर बाजार सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक खुले रहेंगे। कमोडिटी डेरिवेटिव बाजार में शाम 5:30 बजे तक कारोबार हो सकेगा। आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में भी लाइव ट्रेडिंग सेशन होगा। इधर राज्य सरकार के अधीन संचालित सचिवालय कोषागार आज और राज्य के सभी कोषागार कल खुले रहेंगे। वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आकाशवाणी से सुबह 10:10 से रात 10:00 बजे तक बजट से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे।
केंद्रीय बजट 2025-26
आकाशवाणी समाचार के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 पर होगा विस्तृत विश्लेषण।
सुनिए विशेषज्ञों की राय, विशेष बजट बुलेटिन,
बजट पर प्रतिक्रिया और विशेष साक्षात्कार।
बजट से जुड़ी हर जानकारी पहुंचेगी आप तक।
1 फरवरी शनिवार सुबह 10:10 से रात 10:00 बजे तक
100.1 MHz आकाशवाणी गोल्ड और आकाशवाणी के अतिरिक्त चैनलों पर।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna पर जा सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से प्रगति यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत करेंगे। इस दौरान पहले दिन वे भागलपुर में 141 विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। और ब्यूरो के साथ हैं हमारे संवाददाता।
मुख्यमंत्री आज भागलपुर के इंटर स्तरीय विद्यालय बहादुरपुर सबौर के खेल मैदान में 1087 करोड़ रुपए से अधिक की 83 योजनाओं का उद्घाटन और लगभग 147 करोड़ रुपए की 58 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री सबौर स्थित कृषि विश्वविद्यालय में भी कृषि संबंधी विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक भी करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को ले जगह जगह सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से विनोद कुमार।
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा आज से शुरू हो रही है। परीक्षा 15 फरवरी तक चलेगी। इस परीक्षा में 12,92,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा के लिए राज्य भर में 1,677 केंद्र बनाए गए हैं। समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। परीक्षा के दौरान सभी केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू रहेगी। उन्होंने कहा कि कदाचार मुक्त परीक्षा के संचालन के लिए सभी केंद्रों पर CCTV और वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई है। इधर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सभी परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने महाकुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बस सेवा की शुरुआत की है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि ये बस प्रतिदिन पटना से आरा, मोहनिया और वाराणसी के रास्ते प्रयागराज पहुंचेगी। ये सेवा 28 फरवरी तक जारी रहेगी। पटना से ये बस रात 8:30 बजे रवाना होकर सुबह 4 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। वहीं प्रयागराज से रात 10 बजे ये बस चलेगी, जो अगले दिन सुबह 5 बजे पटना पहुंचेगी। बस का प्रति व्यक्ति किराया 550 रूपये निर्धारित किया गया है। श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने कहा है कि कर्मचारी राज्य बीमा ESI गवर्निंग बॉडी का गठन 1 सप्ताह में कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के 4 लाख से अधिक बीमित कामगारों और कर्मियों को लाभ होगा। मंत्री ने कहा कि कर्मियों को कैशलेस इलाज के साथ ही उनके वेतन की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान भी आसानी से हो सकेगा। श्री सिंह ने कहा कि वन नेशन वन लेबर कार्ड से बिहार के श्रमिकों को भी फायदा होगा। उन्होंने कहा कि देश भर के निबंधित निर्माण कामगारों के डाटा को जमा करने के लिए पैन इंडिया पोर्टल के निर्माण का प्रस्ताव भी है। गया के गांधी मैदान में आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कार्यकर्ताओं का संयुक्त सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता सह वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने बताया कि सम्मेलन में भाजपा, जदयू, हम पार्टी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और लोजपा रामविलास के नेता और कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। प्रदेश का मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आज और 3 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ का राज्य में कोई खास असर नहीं पड़ेगा। इसके चलते कुछ स्थानों पर बादल छाए रहने के साथ ही हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 48 घंटों के दौरान अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है।
पश्चिमी विक्षोभ 1 एवं 3 फरवरी को आने वाले हैं, उसमें भी 1 फरवरी वाला पश्चिमी विक्षोभ ज्यादा ताकतवर नहीं है, दूसरा पश्चिमी विक्षोभ ताकतवर है। यानी इन मौसमी सिस्टम के अनुसार पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी एवं मैदानी इलाकों में वर्षा होने का अनुमान है। अगले 48 घंटों के दौरान मौसम शुष्क, न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी एवं तराई वाले जिलों में घना कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान है।
देहरादून में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार की महिला रग्बी टीम ने रजत पदक जीता है। फाइनल मुकाबले में ओडिशा ने 29-5 से जीत दर्ज की। वहीं वुशु के सेमीफाइनल मुकाबले में पटना के शुभम ने पंजाब के अर्जुन को पराजित कर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। बिहार के खिलाड़ियों का प्रदर्शन साइकिलिंग, स्क्वैश और निशानेबाजी में भी अच्छा रहा है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर कांग्रेस नेताओं के बयान पर उठे विवाद का शीर्षक लगाया है, राष्ट्रपति के सम्मान पर संग्राम। दैनिक जागरण लिखता है, वैश्विक नहीं घरेलू स्तर पर लिखनी होगी विकास गाथा। दैनिक भास्कर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को तरजीह देते हुए लिखा है, मिडिल क्लास पर आज लक्ष्मी की कृपा। प्रभात खबर ने अपने पहले पन्ने पर राज्य भर में सहकारी बैंक की 39 नई शाखाएं खुलने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, पटना के सगुना मोड़ पर ज्वेलरी शोरूम से 40 लाख के आभूषण लूटे। आज अखबार की सुर्खी है, बिहार बोर्ड 12वीं की परीक्षा आज से। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का चौथा चरण आज से, भागलपुर में 141 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा आज से शुरू, 12 लाख से अधिक अभ्यर्थी हो रहे हैं शामिल। और 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार की महिला रग्बी टीम ने रजत पदक जीता, पटना के शुभम ने वुशु मुकाबले के फाइनल में जगह पक्की की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जायेगा।